धौला लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्चायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवमम पत्थसौखमणवज्रम् केवलपहोहनिज्य दुर्नयतिमिरञ्जिनं नमः। आचार्य वीर साईं स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम पर लिखी हुई है। ये अपना धौला का दूसरी बार यहाँ अपने व्याख्यान हो रहे हैं। अभी हम आए हैं 25 पृष्ठ पर, 25। विषय क्या हो रहा है उसको देखेंगे। ग्रंथ की शुरुआत में पहले मंगलाचरण किया जाता है, मंगल उसको कहते हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले लिखित ग्रंथ है। आपको मालूम है कि दर्शन आचार्य के कुछ यानी अंगों का कुछ ज्ञान था और उनको ऐसा विकल्प आया कि अभी ये दिन ब दिन तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी कम है, इसका ज्ञान भी हीन हो रहा है, तो इसको लिखित रूप से रखे। तो मुनि संघ के द्वारा उन्होंने लायक ऐसे शिष्यों को बुलाया तो फिर ये पुष्पदंत और भूतबलि वहाँ आए। उनकी वो परीक्षा वाली वो सब स्टोरी मालूम है। तो उनको उन्होंने ये पूरा पढ़ाया। उसके बाद पुष्पदंत और भूतबलि ने ये जो रचना की उसका नाम है षटखंडागम, 6 खंडों में इसकी रचना है। तो उसके सबसे पहले में पहला जो सूत्र है वो नमोकार मंत्र है। ये लिखित रूप से तब से पाया जाता है, वैसे है तो अनादि का परंतु लिखित रूप से यहाँ पाया जाता है। अब पहले में पहले शास्त्र के शुरुआत में ये जो परंपरा है कि पहले मंगल किया जाता है, मंगलाचरण बताते हैं। और क्या क्या किया जाता है तो देखो, अभी पेज नंबर है, यानी शास्त्र लिखना प्रारंभ करने के पहले 6 बातें होती है या उसका व्याख्यान करने के पश्चात ही शास्त्र का आरंभ होता है। 8 नंबर के पृष्ठ पर है। विशेषार्थ के नीचे यानी चौथी लाइन, पेज नंबर 8 मिला। पहले नंबर के पुस्तक है ना आपके, जयधौला लाई
प्रस्तावना नहीं, अंदर जो
प्रस्तावना नहीं लानी। नहीं नहीं, आगे अभी प्रस्तावना नहीं है, उसके आगे चलो।
वो आगे सीखे थे
आपने, जहाँ लगाए ना हक लिप वो भी बहुत पहले लगाए, बहुत सारे पेजेस।
हाँ
ना, आपने प्रस्तावना निकाली उसमें से 8 नंबर निकाला। चौथी लाइन में क्या लिखा, देखो क्या लिखा है, कहाँ से शुरुआत है, मंगल है ना, क्या लिख चौथी लाइन मंगल। हाँ तो देखो, एक नंबर पर मंगल, फिर निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, यानी ये 6 का पहले व्याख्यान किया जाएगा। मंगल है जो पहले पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने रूप वहां मंगल किया जाएगा। किस निमित्त से ये लिखा गया उसको बताएंगे। हेतु यानी वो शास्त्र लिखने का प्रयोजन क्या है वो बताएंगे। परिमाण यानी वो ग्रंथ कितना बड़ा हो, कितने श्लोक प्रमाण होगा उसकी बात यहाँ लिखी जाती है। ग्रंथ का प्रमाण, फिर नाम, ये सब आगे चलकर बहुत विस्तार से इसकी चर्चा आने वाली है। और फिर कर्ता बताया जाता है। ये इतना सब वर्णन करने के बाद शास्त्र की रचना प्रारंभ होती है, यहाँ ये बात बताई। अब यहाँ मंगलाचरण ने के रूप में यहाँ नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम ये उन्होंने लिख दिया। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि केवल यहाँ तो मंगल किया और आप तो कहते इतनी सारी बातें बतानी चाहिए और इसके बाद तो ग्रंथ शुरू किया है, तो कहते हैं ये देशामर्शक है। देशामर्शक है ने जैसे हम हमारे शॉर्ट फॉर्म होते कि किसी एक का नाम लिया तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, वैसे इसी में ये सारी बातें गर्भित हो जाती है। अब उसके बाद वो कहते हैं 10 नंबर का पेज निकालना, ये हमने जो 6 अधिकार या 6 प्रकार से व्याख्यान बताया मंगल निमित्त हेतु वगैरह, उसमें प्रत्येक में 6-6 बातें बतानी है। कौन सी 6 बातें बताइए? देखो पहली लाइन, उन उक्त मंगलादि 6 अधिकारों में से पहले धातु, धातु यानी वर्ब क्रियापद, वर्ब क्रियापद जिसको कहेंगे, कौन से शब्द से ये तैयार हुए है शब्द उसकी बात बताई जाती है। जैसे मंगल शब्द है तो मंगल शब्द का धातु ओरिजिनल कौन सा है कि जिसके ये मंगल शब्द तैयार हुआ उसकी बात बताएंगे। फिर निक्षेप, ये निक्षेप क्या है वो उसकी चर्चा अभी चल रही है, यानी कौन सी 6 बातें बतानी है यहाँ पर। अभी मंगल शब्द है हमारे लिए तो मंगल का धातु कौन सा है ओरिजिनल, वर्ब कौन से वर्ब से ये शब्द तैयार हुआ वो बताएंगे। उनमें निक्षेप लगाएंगे जैसे नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, वो सब इस पर अप्लाई करके बताएंगे। उसमें नए की बात होगी, एकार्थ यानी उसके एकार्थवाची अन्य शब्द भी बताएंगे। निरुक्ति, निरुक्ति यानी वो ये धातु तो बताया परंतु वो शब्द कैसे तैयार हुआ ये यहाँ बताई जाएगी। और अनुयोग यानी उसके संबंध में अनेक बातें बताई जाएगी। अब यहाँ मगी नाम का धातु उन्होंने बता दिया, उसके बाद निक्षेप की चर्चा चल रही है, मंगल के निक्षेपों की चर्चा चल रही है। तो निक्षेप हम तो ऐसे तो 4 निक्षेप लगाते हैं परंतु है 6। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। यानी नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप। ये बातें यहाँ 11 पेज पर है, देखिए सेकंड नाम में, सेकंड लाइन में। पहले पहले निक्षेप कहना किसको, इसकी डेफिनेशन यहाँ बताइए पहले लाइन से। जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करता है। निक्षेप शब्द कैसा हुआ? क्षेपण यानी डालना। तो ये हम निक्षेप किसमें लगते हैं? तो ज्ञेय में लगते हैं, वस्तु में लगाते हैं कि हमने वस्तु का नाम रखा तो ये हो नाम निक्षेप। हमने इस वस्तु को कह दिया कि ये क्या है, ये हमारा घाती कर्म है, कहा कह सकते हैं ना किसी को, ये तो उसकी स्थापना कर दी। जैसे अपने शतरंज में हम कहते ये घोड़ा है, हाथी है, ये क्या हुआ, उसमें स्थापना की, वो स्थापना निक्षेप होता है। तो उसमें कहते हैं कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से ये 6 प्रकार का निक्षेप है। अब मंगल शब्द पर निक्षेप लगाना है तो हम कहेंगे नाम मंगल, किसी का नाम मंगल रख देना वो है नाम मंगल। तो उसमें नाम रखने, उसमें उसके वो गुण होने चाहिए, जाति वो होने चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। या जैसे हम किसी का ये टोपी वाला, ये चश्मे वाला, ऐसा भी नाम रख सकते हैं क्योंकि उसके संयोग में कौन सा द्रव्य है उसकी अपेक्षा से भी नाम रख सकते हैं। किसी को काना कहना, लंगड़ा कहना, कुबड़ा कहना, शरीर के व्यंग से उसको बुला सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। नाम जो है, नाम निक्षेप, बिना किसी अपेक्षा से कोई भी नाम रखना यह है नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप में क्या कहेंगे हम कि किसी चीज में अन्य किसी चीज की स्थापना कर दें, इसको कहेंगे स्थापना निक्षेप। अभी हमारी यहाँ बात द्रव्य निक्षेप की चल रही है तो द्रव्य निक्षेप में देखिए ये बात यहाँ से शुरू होती है। अब निकालना पेज नंबर, ये हमें नाम स्थापना की चर्चा के बाद इसी पेज पर 11 पेज पर पहले में पहले उन्होंने निक्षेपों में ही नयों की भी बात बताई है कि जो निक्षेप होते हैं वस्तु में किए जाते हैं और वो निक्षेपों को देखकर जो नए लगते हैं ज्ञान में, नए तो ज्ञान के भेद है, वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके द्रव्य को या पर्याय को या उसकी किसी, तो उस अपेक्षा से उतना ही उस एंगल से द्रव्य को देखना उसको कहेंगे नए। तो यहाँ कौन से निक्षेप में कौन से नए लगते हैं उसकी बात हुई। तो तो उन्होंने यहाँ बता गया कि वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक होती है, तो इसमें जो नए जो है उसके सात नाम बताए, एक संग्रह नए, एक व्यवहार नए। पहला तो नैगम नए आता है, नैगम नए, संग्रह नए, ये सब विस्तार से बहुत आने वाली बात है, सब इसमें लिखी है, क्योंकि ये बहुत आगे अभी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हम द्रव्य निक्षेप की बात कर रहे हैं, परंतु न केवल अच्छा नए की बात हम बाद में बताएंगे, अभी पहले निक्षेप की बात करेंगे, क्योंकि अपना विषय निक्षेप का चल रहा है ना, तो निक्षेप की बात करेंगे। निक्षेप हमने देखे ना कौन कौन से, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। नाम और स्थापना समझ में है, अभी द्रव्य निक्षेप की बात चलती है। देखो ये बात अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। पेज नंबर 21 स्थापना मंगल के बाद द्रव्य मंगल की बात यहाँ चले, यानी द्रव्य निक्षेप 21 नंबर का पेज तीसरा पैराग्राफ यहाँ लिखते हैं, अब द्रव्य मंगल का कथन करते हैं। इक्कीस पेज से शुरुआत करते हैं अभी हम। हाँ देखो द्रव्य मंगल का कथन कहते करते हैं, आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को, देखो 21 नंबर का पृष्ठ है, ये द्रव्य मंगल यानी द्रव्य निक्षेप की बात चल रही है। अभी द्रव्य निक्षेप किसको कहना ये बात है ना, तो हम द्रव्य तो वही का वही होना चाहिए, परंतु हम उसके भूतकाल के या भविष्यकाल के पर्याय का भी आरोप कर सकते हैं। अभी हम मुख्य में उसके दो भेद किए, आगम और नो आगम। आगम यानी ग्रंथ शास्त्र, उस संबंधी ज्ञान, तो ये ज्ञान को जानने वाला जो जीव है, अभी कौन सा ज्ञान, आगम का ज्ञान, पर आगम तो इतना बड़ा है, तो कौन से विषय, अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, मंगल, तो मंगल संबंधी जिनागम में जो बातें हैं उसको जानने वाला जीव, उस जानने वाले जीव को यहाँ मंगल कह रहे हैं, परंतु वो जानने वाला जीव इसमें द्रव्य मंगल में विशेषता क्या है, आगम द्रव्य मंगल में वो जानने वाला तो है, परंतु वर्तमान में उसमें उसका उपयोग नहीं है, नहीं है, तभी तो वो द्रव्य निक्षेप में, क्योंकि जानने वाला जीव तो वही का वही है, परंतु अभी उसका उपयोग अन्यत्र है, अभी जान रहा नहीं, अभी उसने मंगल नाम का शास्त्र पढ़ा है, मंगल संबंधी जो शास्त्र में बातें आती है उसका वो जानकार है, यानी उसने वो पहले पढ़ चुका है, परंतु तो अभी उसमें उसका उपयोग नहीं है।
तो पढ़ने वाला
फिर से
खाना खाएगा क्या नहीं, तो उस समय उसका उपयोग वहाँ नहीं है,
यानी आपने अभी कर्म की थ्योरी पढ़ी है, यानी अभी हम कर्म शब्द पर लगाते हैं, कर्म शब्द पर हमको द्रव्य निक्षेप लिखना है, तो हम कर्म शास्त्र को, कर्म संबंधी आगम को जानने वाले जीव को कर्म कहेंगे, किस अपेक्षा, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा, उसको आगम द्रव्य कर्म कहेंगे, उस जीव को क्या कहेंगे, आगम द्रव्य कर्म। अभी हमारी कर्म की बात नहीं चल रही, मंगल की चल रही है, मंगल संबंधी जो जिनागम है उसका जो जानने वाला जीव है, उस शास्त्र को जानने वाला जीव, उस जीव को यहाँ द्रव्य निक्षेप में उस जीव को ही मंगल कहेंगे, ये कहना चाहते हैं। जीव को मंगल कहा, पर वो कौन सा निक्षेप लगा, आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप से जीव को मंगल कहा। कौन सा जीव को कहें, किसी भी जीव को नहीं, जो मंगल संबंधी आगम को जानने वाला है, तो वर्तमान में भी जानने वाला हो सकता है, तो उसको वो भाव निक्षेप में चला जाएगा। इसलिए अभी ये द्रव्य निक्षेप में किसको लेना, जानने वाला है परंतु वर्तमान में उसका उपयोग अन्यत्र है। मान लेते वो पूजा कर रहा है, उसको तो वो आगम पढ़ नहीं रहा है, मान लेते न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वर्तमान में उसका उपयोग आगम में नहीं है, ऐसा लेना। परंतु वो आगम का जानकार है, कौन से उस विषय के आगम का जानकार है, उस जीव को यहाँ आगम द्रव्य मंगल कहा, ये एक भेद हुआ। अब नो आगम में क्या लेना है, यहाँ तो जीव को लेना है और वहां जीव को नहीं लेना है, या जानने वाले जीव को नहीं लेना है, तो क्या क्या ले सकते उसमें, उसके शरीर को ले सकते, या उस जीव को ले सकते हैं जो अभी नहीं, अभी तक जाना नहीं, भविष्य में कभी जानेगा, उसको ले सकते, या इनको छोड़कर अन्य भी बातों को कह सकते हैं, वो कौन कौन सी, वो यहाँ अभी बता रहे। यानी हमारे द्रव्य निक्षेप का भेद चल रहा है, आगम द्रव्य निक्षेप से, यानी आगम द्रव्य मंगल किसको कहेंगे, मंगल संबंधी शास्त्र के जानकार जीव जो उसमें उपयोग नहीं है, वो है आगम द्रव्य मंगल। अभी नो आगम द्रव्य मंगल की बात चल रही है। द्रव्य आगम नो मंगल में तीन भाग, कौन से, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर, जानने वाले जीव का शरीर, वो तो नहीं जान रहा है ना, तो उसको नो आगम कह दिया। नहीं जानने वाले में नो आगम को लेना, नहीं जानने वाले में शरीर भी हो सकता है, या वो जीव भी हो सकता है जो भविष्य में जानेगा, अभी नहीं जान रहा है, या इनके अलावा अन्य भी चीजें हो सकती है, अभी वो बताएंगे अभी। हाँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो उसमें से ज्ञायक शरीर की बात चलेगी, यानी जानने वाले जीव का शरीर है, तो जानने वाले जीव तो है। अब ये शरीर उसका वर्तमान का शरीर को भी हम कह सकते, भूतकाल के शरीर को भी कहेंगे, जीव तो वही है परंतु उसने अन्य शरीर, ये पूर्व भव से आए तो वहाँ अन्य शरीर धारण किया था, या भविष्य का शरीर को भी कह सकते हैं, या तो मनुष्य शरीर अभी देव में चला जाएगा, अन्य शरीर धारण किया उसने, तो उसको तीनों को ही ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। अब ये ज्ञायक शरीर के और तीन भेद पड़े, अभी मैंने जो बताया था, भूत ज्ञायक शरीर यानी इसको अतीत कहेंगे, भूतकाल का, वर्तमान का ज्ञायक शरीर, और भविष्य का ज्ञायक शरीर। अब वर्तमान और भविष्य की बात छोड़कर भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल के यानी पूर्व भव का, तो पूर्व भव के उस जीव के शरीर को भी क्या कहा, नो आगम द्रव्य मंगल, क्योंकि वहां जो जानने वाला जीव तो वही का वही है ना, इसलिए। और वो शरीर भले वो जुदा है परंतु उसमें रहने वाला जीव वही है, इसलिए अतीत काल की अपेक्षा जो अतीत शरीर था उसके भी तीन भेद किए, अतीत शरीर के। ये अतीत शरीर छोड़ा कैसे उसने, पूर्व भव का शरीर कैसे छोड़ा है, उसका मरण कैसे आया था, तो मरण आया था, हो सकता है कि उसकी आयु पूरी हुई और नेचुरली जिसको हम कहेंगे कि उसकी आयु का क्षय हुआ और मर गया, एक हो सकती है। कभी कभी क्या हो सकता है कि कदली घात से भी मर सकता है, आयु तो थी बाकी परंतु उसका कदली घात हुआ और मरण हुआ। तीसरी बात क्या हो सकती है कि उसने स्वयं उस संन्यास पूर्वक मरण किया। आयु का तो क्षय सभी में है, परंतु ये तो छूटा, उसको कहेंगे चुत, अपने आप छूट गया, यानी वो शरीर कैसे हुआ तो चुत, चावित यानी छोड़ना पड़ा उसे, हाँ कदली घात, और त्यक्त यानी उसने त्याग किया। तीन भेद कौन से, च्युत, चावित और त्यक्त। हाँ, देखो देखो, पहले हमने देखा था द्रव्य निक्षेप यानी द्रव्य मंगल की बात है, उसमें आगम द्रव्य निक्षेप यानी आगम द्रव्य मंगल, यानी निक्षेप किसका चल रहा है अपना, मंगल का, उसको कहेंगे आगम द्रव्य मंगल। आगम द्रव्य मंगल किसको कहा, जानकार जीव जो उसमें उपयोग नहीं उसको कहा आगम द्रव्य मंगल। नो आगम द्रव्य मंगल के हमने तीन भेद देखे थे, यानी जो जीव नहीं है परंतु अन्य कुछ है, क्या है, ज्ञायक शरीर,
भावी
और तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त करके इनको छोड़कर अन्य जो कुछ है। अब ज्ञायक शरीर के हमने तीन भेद किए, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भविष्य ज्ञायक शरीर। भूत कहो या अतीत कहो, एक ही बात है। ये भूत ज्ञायक शरीर के भी तीन भेद किए, चुत चावित और त्यक्त है। आपने तो पकड़ लिया है, आसान है ना। अभी चुत यानी वो अपने आप ही उसकी आयु पूरी हो गई और यथा जितने आयु बांधकर है वो कर वो चला गया। चावित यानी उसके कदली घास से मरण हुआ। अभी त्यक्त है यानी उसने तो जिसको हम कहेंगे संलेखना या जो समाधि मरण पूर्वक उसने देह छोड़ा, तो उसके भी तीन भेद है। त्यक्त वाले उसकी बात अपनी चल रही थी, हम पेज नंबर 25 पर आए थे वैसे तो शुरुआत से, तो वो 24 पर त्यक्त की बात करेंगे। देखो पहले 23 नंबर का पेज निकालना, उसमें नीचे से जो तीसरा पैराग्राफ है ऊपर के तीसरा कहो, कदली घात मरण के बिना, बिना की बात यानी जो कदली घात से मरण नहीं हुआ तो कैसा हुआ, पके हुए फल के समान कर्म के उदय से झड़ने वाले आयु कर्म के क्षय से अपने आप पतित शरीर को चुत शरीर कहते हैं, यानी उसकी आयु पूरी हुई और मर गया। अब नीचे की लाइन लास्ट एकदम उसी पेज पर, कदली घात के द्वारा छिन्न आयु के क्षय होने से, छिन्न यानी आयु कट डाउन हो गई ना उसकी, उसके निषेकों का घात हुआ और फिर उसका क्षय हो गया यानी वो निकल गए एक एक निषेक। छूटे हुए शरीर को चावित शरीर कहते, उस शरीर को ही चावित शरीर कहा। उसके बाद 24 पेज पर तीसरा पैराग्राफ, त्यक्त शरीर भी तीन प्रकार का है। अब उसके तीन अलग अलग विधि बताए, उसके प्रोसेस, प्रायोपगमन विधान से छोड़ा गया, दूसरा है इंगिनी विधान से छोड़ा गया और तीसरा है भक्त प्रत्याख्यान विधान से छोड़ा गया। अब ये प्रायोपगम गमन किसको कहते हैं, तो जब मुनिराज ने ऐसा प्रतिज्ञा कर ली कि ना मैं किसी अन्य की भी वैयावृत्ति ले लूंगा और न मैं अपना अपने आप भी कुछ करूंगा, बस निश्चल ध्यान में लीन हो जाते हैं और उनका ये मरण हो जाता है, तो उसको प्रायोपगमन कहते हैं। दूसरी बात जो है, देखो यहाँ लिखा है विशेष, यह है ना, एक दो तीन चौथा पैराग्राफ में एक सिंगल लाइन है विशेषास के ऊपर, अपने और पर के उपकार की अपेक्षा रहित समाधि मरण को प्रायोपगमन कहते हैं। ये भी बात अपनी हुई थी। आज अपना विषय 25 पेज पर शुरुआत होता है पहली लाइन से, प्रायोपगमन। देखा हमने ना, स्वयं अपने आप ही कुछ शरीर का उपकार करता है ना पर से कुछ अपेक्षा करता है। अब इंगिनी मरण क्या है उसको बता रहे हैं यहाँ पर। 25 पृष्ठ पर पढ़ेंगे शुरुआत से, जिस सन्यास में, यानी ये तीनों ही सन्यास के प्रकार है, अभी जिस सन्यास में अपने द्वारा किए हुए उपकार की अपेक्षा रहती है किंतु दूसरे के द्वारा किए गए वैयावृत्ति आदि उपकार की अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, उसे इंगिनी समाधि कहते हैं। आपने शायद वो समाधि का कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, तो कहते कि जो समाधि लेने वाले, जो जिसको हम संलेखना लेते हैं, अन्य भी बहुत सारे उनकी वैयावृत्ति करते हैं, उनको उपदेश देते अलग अलग प्रकार से, वो सारा आगम के अनुसार वो चलता है। तो कहते ऐसी भी जिसको अपेक्षा नहीं है परंतु वो स्वयं स्वयं का कर सकते हैं, उसको कहेंगे इंगिनी मरण। उसी का विशेषार्थ सब पढ़ते हैं। इंगिनी शब्द का अर्थ इंगित है, यानी अभिप्राय है। हम कहते हैं कोई कुछ कार्य कर, इसका इंगित क्या है, इसमें इंगित क्या है, नहीं व्हाट इज इट, ये उसका हेतु क्या है, कोई अंदर से कुछ पर्पस। तो यहाँ कहते हैं इंगिनी शब्द का अर्थ इंगित यानी अभिप्राय है। इससे यह तात्पर्य निकलता है, इस समाधि मरण को करने वाला स्वतः किए हुए उपकार की अपेक्षा रखता है। यानी वो तो जो कुछ हाथ पैर हिलाना है, मलमूत्र के लिए जाना है, जो कुछ है वो स्वयं स्वयं का करेगा, अन्य किसी के हेल्प वहां नहीं लेता, ये कहना चाहते। इस समाधि मरण में साधु संघ से निकलकर किसी योग्य देश में समभूमि अथवा शिलापट्ट देखकर, शिलापट्ट यानी थे रॉकी एरिया होती है ना जिसमें कोई घास वगैरह नहीं, उसको शिलापट्ट कहेंगे। कोई सीधी जमीन होगी या कोई पहाड़ जैसे या कोई शिला होगी तो कहेंगे शिलापट्ट। उसके ऊपर स्वयं तृण का संस्तर तैयार करके, ये सूखा हुआ जो घास होता है उसको तृण कहते हैं, ये गीला तृण नहीं समझना, सूखा हुआ, क्योंकि वो तो जीवों से रहित चाहिए, उसको देखकर बराबर वो वहां बिछा देते हैं, उसको संस्तर तैयार करके इस बैठने या सोने के लिए उसी से डालते हैं, उसको संस्तर कहते हैं। समाधि की प्रतिज्ञा करता है, अन्य में जो है ना तो अन्य श्रावक या अन्य संग वाले भी ये सब कर सकते हैं, यहाँ तो ये स्वयं कर रहे, ये बात बता रहे। इसमें उठना बैठना सोना, हाथ पैर का पसारना, मलमूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाएं क्षपक स्वयं करता है। जिन्होंने संलेखना धारण की है उसको क्षपक कहते हैं। क्षपक यानी वो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला, वो इसका अर्थ नहीं है। एक होता है शब्द क्षपक, दूसरा एक शब्द आता है निर्यापक। अब ये तो स्वयं ही है, वो स्वयं ही सब कर रहा है। जहां संघ में होते हैं तो अन्य मुनि कोई उनको उपदेश देने वाले होते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, वो उनको निर्यापक आचार्य कहते हैं, और बाकी जो संघस्थ अन्य साधु होते हैं वो उनका वैयावृत्य करते हैं। वो सारे निर्यापक आचार्य वो सब उनको गाइड करते क्या करना है। क्षपक यानी जो जिसने समाधि ली है उनको उपदेश भी देते हैं, जैसे ये जो मोक्ष मार्ग का उपदेश जो है ना कि क्या उस जीव के परिणाम कहीं विचलित न हो जाए, इस पद्धति से उनके उपदेश भी दिया जाता है, तो उनको क्षपक कहते हैं। किसी दूसरे साधु की सहायता नहीं लेता, ये इंगिनी मरण की बात चल रही है। इस तरह यावत जीवन, अभी यावत जीवन करते ने ये जब उसने इंगिनी मरण यानी वो जो उसने प्रतिज्ञा ली है ये मरण तक स्वयं करेगा, तो उसमें क्या होता है, चार प्रकार के आहार के त्याग के साथ, यानी भोजन का भी त्याग किया, ये पानी का भी त्याग किया, अन्य कुछ खाने योग्य पदार्थों का भी त्याग किया, चार जो हम चौ विहार करते ना ऐसे ये चार प्रकार के अन्न का त्याग करते, स्वयं किए गए उपचार सहित समाधि मरण को इंगिनी संन्यास कहते हैं। यानी वो संलेखना की भी विधि अलग अलग होती है, ये त्याग के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, ये डायरेक्ट कोई सबका त्याग करके ये आत्महत्या तो है ही नहीं है, और वो भी तभी लिया जाता है कोई ऐसा कारण सामने आता है कि अभी इसमें से नहीं बचने वाला है या अन्य अन्य, अभी उसकी चर्चा नहीं, अभी अपना ये विषय नहीं है यहाँ पर। यानी केवल मरण को बुलाना ऐसा उसका अर्थ नहीं है, मरण सामने देखकर इस प्रकार से त्याग किया जाता है। या कोई असाध्य रोग भी है तो उसमें भी स्लोली कैसे पहले अन्न का त्याग किया जाएगा, कुछ छाछ वगैरह लिया जाएगा, फिर दूध या जो कुछ यथा योग्य, फिर पानी, एक एक का त्याग किया जाता है, वो आगे वाले वो भक्त प्रत्याख्यान में बताएंगे, तो उसके भी ये चरणानियोग के ग्रंथों में बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। अभी तो अपना ये वो शरीर कैसे छोड़ा बस इतने लिए इसका विषय यहाँ चल रहा है। देखो अब ये भक्त प्रत्याख्यान क्या है, भक्त का अर्थ है ये भक्त है ने वो भक्ति करने वाले शिष्य, वो भक्त नहीं, भक्त है ने वो भोजन आहार, प्रत्याख्यान ने त्याग, प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग, पचकान कहते हैं ना, क्या कहते हैं
पचकान,
वो उसी का शब्द आया ना, प्रत्याख्यान से ये शब्द तैयार पचकान। देखो जिस संन्यास में अपने और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। इसी का विशेषा, भक्त नाम भोजन का है और प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है जिस संन्यास में, संन्यास जिसको संलेखना भी कहते हैं, क्रम क्रम से आहार आदि का त्याग करते हुए, क्रम से यानी अभी उस मैंने बताया ना पहले भोजन का त्याग करेंगे और फिर कुछ पेय ले लेंगे, ऐसे दूध लेंगे, कोई छाछ लेंगे इस तरह से, फिर उसको भी हाँ वो उसकी जो पद्धति है सारी। हाँ तो क्रम क्रम से आहार आदि का त्याग करते हुए अपने और पराये उपकार की अपेक्षा रख कर समाधि मरण किया जाता है, उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। क्योंकि वो तो और भी बीमार हो जाते हैं, तो कोई स्वयं तो उठकर ये जो मुनि की आहार की विधि है तो जा नहीं सकते, अभी उसके लिए बहुत सारे अलग अलग बातें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मुनि के लिए है ये, मुनि के लिए ये मुख्य। अब कोई श्रावक भी है और उसको पता चला है कि अभी मैं नहीं बचूंगा, तो उनकी भी विधि होती है, वो भी त्याग करते हैं कि अभी मुझे भोजन का त्याग है, अभी मुझे पानी का त्याग है। और ऐसा भी है कि बीच में मर गया तो एक बार भोजन लेने के बाद भी, ये तो श्रावक रेगुलर भी करते हैं ना, अभी 4 घंटे के लिए मुझे आहार का त्याग, ऐसा भी ले लिया जाता है। उसके अलग अलग विधियाँ हैं, वो सारे चरणानुयोग की जैसी आज्ञा है उस तरह से होता है।
देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे घर में हम अधिक मेंबर्स हैं तो कोई बीमार पड़े तो हम उसको जाके मदद करेंगे, उसको उठा के कहीं ले जाएंगे या जो भी बाकी काम होता है वो हम दूसरे से करवाते हैं। लेकिन मान लो कोई अकेला ही होगा घर में, वो क्या करेगा, किसी का हेल्प नहीं लेता है, वो अपना अपना जिधर क्या करना है वो करेगा। वैसे यहाँ मुनिराज जो होते हैं वो ऐसा प्रण लेते हैं कि मैं किसी की सहायता नहीं लूँगा। यहाँ तक है कि मान लो कि पैर दुख रहे तो पैर पसार दिए ऐसा भी नहीं करेंगे। ये स्व का उपकार और पर का उपकार, यानी पर से हमने जो कुछ सहाय लिया है, यानी ऐसी क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ये शरीर रूप मैं नहीं हूँ ऐसी उनकी 100% खात्री है, इसलिए शरीर के अपनी भाषा में लालन पालन या शरीर का क्या बोलते हैं, एक मिनट, पंपाड़ते नहीं है गुजराती में बोलते हैं ना, शरीर की कोई, यानी इतने वो स्ट्रांग अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए ऐसे मतलब उसमें लीन रहते हैं कि शरीर के बारे में कोई सोचते ही नहीं। यहाँ समझाने के लिए या समझने के लिए हम बाकी बातें बताते हैं कि भाई बीमार पड़े तो उनको उठा के ले जाएं और जो कुछ कार्य कराना है करना है वो दूसरे को ही करते हैं। तो ये दूसरे और स्वयं के कारण से करने वाले को भक्त प्रत्याख्यान कहा, और जो अकेला ही अकेला है उसको इंगिनी संन्यास कहा। क्या है आपको कुछ मालूम नहीं ना क्या क्या होता है क्या क्या नहीं,
मुनिराज स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं।
हाँ, जैसे अभी देखो हम क्या है अपनी बात करते हैं कि हम रात को भोजन नहीं लेते, कई लोग तो सूर्यास्त के बाद पानी तक नहीं पीते, हमारी इतनी फर्मनेस नहीं है तो हम कहते हम रात को दूध लेंगे रात को दवा खाएंगे, इसमें अंतर आ गया ना। वैसे उनका इतना कन्फर्मेशन होता है क्योंकि केवल शाब्दिक नहीं अनुभव किया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं तो जीव द्रव्य हूँ और जो कोई मेरे में अनंत ज्ञान और अनंत आनंद मिलने वाला है वो मेरे में से आएगा, ऐसे उनके 100% जब खात्री होती है तभी। अभी मान लो कि उनको पता लगा कि मैं अभी ख़त्म हो जाऊँगा मरण आएगा तो उस समय ऐसे वो प्रतिज्ञा लेके संन्यास मरण जिसको कहते हैं ऐसा लेते हैं। संन्यास मरण ने पति पत्नी से झगड़ा करके पति गया ऐसा वो संन्यास वाला नहीं।
नहीं नहीं श्रावक के भी संलेखना होती है ना, श्रावक भी संलेखना धारण करते हैं,
श्रावक भी तो सम्यक दृष्टि है ना,
मुनि की अपेक्षा से होता है ये आहार का त्याग, तो श्रावक भी यानी उनके यथा योग्य जितनी भूमिका पर है वैसे वो भी करते, क्योंकि अभी मरण सामने दिख रहा है तो अभी शरीर में नहीं हूँ और उसका इतना है अंदर से कन्फर्मेशन, वो भी त्याग करता है, यथा योग्य पुण्य का बंध हो रहा है।
आप क्या पूछ रहे हैं फिर से बोलना, आपने क्या पूछा?
हम लोग एक जनरल देखते हैं ना किसी का मरण होता तो वो छोड़ देते हैं,
वो छोड़ देते हैं कि दूसरे छुड़वाते हैं,
वो स्वयं अपने परिणामों से छोड़े
वो
तो
अपने परिणाम से छोड़े तो अच्छा है, लेकिन मान लो कोई बहुत बीमार है, बात भी नहीं कर सकता है और कोमा तक गया है, अभी जाने दो ना, तो उसको गद्दी पर से उठा के जमीन पे चटाई पर सुलाते हैं, बोले तेरे को इतना त्याग है उतना त्याग है, उसको मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और बाकी लोगों को अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमने इनका मरण बहुत अच्छी तरह से साध लिया, ये सब क्रिया में अटके हुए लोग हैं।
यानी स्वयं अपने परिणामों से करे तो हम कहेंगे उसने उसका त्याग किया,
क्योंकि प्रत्येक जीव अपना स्वयं का डिसीजन लेगा ना।
देखो अभी हम यहाँ
जीव को संलेखता का संलेखता हो सकती है,
हो सकती है नहीं, उसको समाधि मरण नहीं कहेंगे, पर संलेखना जैसे हमने उसने क्रिया में और परिणाम में उसने कर दिया, अभी उसको सम्यक तो नहीं हुआ है। हाँ। हो सकता है ना, ये प्रतिमान योग भी बताता है कि नहीं, वो विशल्य की पूर्व भोग की कथा मालूम है कि नहीं मालूम। वो बहुत बड़े राजा की लड़की थी, क्या नाम था उसका, विशल्य के पूर्व भोग का, विशल्य मालूम है कि वो भी मालूम नहीं, राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ था इसके साथ रावण के, वो तो मालूम है, और लक्ष्मण मूर्छित हुआ था क्योंकि राम रावण ने कोई विद्या चलाई और उसके साथ वो मूर्छित हो गया, तो उसका कुछ उपाय नहीं पता है। तो किसी ने बताया कि विशल्या जो स्त्री है तो उसके ऐसी कुछ औषध रिद्धि थी कि उसके कारण
स्नान किया हुआ
स्नान के पानी या उसको चलती भी है तो उसके कारण वो बीमारियां दूर हो जाती। तो उसकी क्या कथा, तो उसकी पूर्व भोग की कथा, उसको ये कैसे प्राप्त हुई। अभी स्त्री पर्याय ने देखो यहाँ, यानी जन्म से समय दृष्टि तो नहीं थी, मिथ्या दृष्टि, परंतु उसके पूर्व भोग की, पूर्व भोग में भी वो स्त्री थी, किसी राजा की पुत्री थी और कोई ऐसे उसको उठाकर ले गया, विद्याधर कुछ था, और उसके पीछे दूसरा कोई आया तो वो घबरा के उसको भी जंगल में ही छोड़ के चला गया।
मैंने वो उसके साथ शादी करने के उसके, लिए उसको उठाए ले,
उसकी स्त्री आई पत्नी ने देखा तो वो उसके पीछे आई तो उसने उसको भय से उसको कहीं जंगल में छोड़ दिया। तो वहाँ तो कुछ 6000 वर्ष की ऐसी कुछ बात है, बहुत बड़ा काल था, तो वहाँ जंगल में ही उसने बिताया, वहीं पर कुछ रहती थी वगैरह वगैरह। तो
स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने ये
वो भी बात किसी के द्वारा वो राजा तक पहुंची और राजा वहाँ चला आया, पर बाय दैट टाइम उस क्या हुआ था, किसी अजगर ने उसको खा लिया था, वो आधी तो बाहर थी उसके मुंह में और आधा तो अंग चला गया था। हाँ, अनंतमती शायद। हाँ, तो उसने जब वो पता चला कि अभी अजगर खा रहा है तो उसने संलेखना धन कि अब मैं उसने इतने एरिया के बाहर नहीं बचूंगी तो भी नहीं जाऊंगी और मैं मुझे सब त्याग है।
उसने पिताजी आते
तो फिर पिताजी और उसने वो तो बाण मारना चाहते, अजगर को मारना
चाहते
क्योंकि अजगर को मारते तो ये बच जाते, तो कहते उसको अभी मारना मत, उसकी हिंसा मत करना क्योंकि ऐसे भी मैंने संलेखना ली है, अभी मैं तो मुझे वो आजीवन त्याग है इन सब चीजों का, मैं तो इतने एरिया के बाहर भी नहीं जाऊंगी और अभी मेरे लिए अभी इसको मारना मत। और बाद में वो विशल्य होकर जन्मी। ये आपका प्रश्न था ना, मिथ्या दृष्टि क्या धारण कर सकता है, देखो ये पुण्य के परिणाम है एक प्रकार का, शांति से उसने मरण को अपनाया। हाँ, भले अभी उसको समय दर्शन नहीं हुआ है, हाँ, पर तत्व का निर्णय या तत्व का अभ्यास चल रहा है, उसको मालूम है तत्व संबंधित, ऐसा है ना। अभी हम ऐसा भी देखें, अरे मुनि दीक्षा तक ले सकते हैं, अज्ञानी नहीं ले सकते क्या, मिथ्या दृष्टि लेते रहे कोई, तभी तो पहले गुण स्थान से कोई डायरेक्ट सातवें में जा सकता है, ये तो हमने देखा है। तो मिथ्या दृष्टि को नहीं करना चाहिए बात कहाँ है, परंतु वो पुण्य परिणाम है, वो राग परिणाम है। और फिर अन्य यानी जैसे रचे पचे रहे उसके बदले तो त्याग करने की भावना हो सकती है किसी को, उसमें कुछ गलत नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, अभी मरण सामने है तो हाय हाय करने मरकर तो कोई ऐसा भी होता है शांति से, और अब अभी मुझे ये नहीं कुछ करना, ये मंदता है, कषाय की मंदता है, उतना पुण्य परिणाम है। और भगवान का नाम लेकर यानी उससे हम कहेंगे तो शुभ लेशाओं में मरण हो रहा है, हो सकता है जाएगा कहीं भवनत्रिक में या देव में कहीं पर, ख्याल में आती ना बात।
ये कुछ बता रहे हैं ना भक्त प्रत्याख्यान वगैरह, ये थोड़ा सा उसका पहले से जिसको हम कहेंगे कि क्या क्या बातें होती हैं मुनियों की अपेक्षा से जब ये समाधि वर्णन धारण करते हैं, ये मालूम होगी तो ये बात ख्याल में आती है।
जिसके बहुत विस्तार है, ये मूलाचार आदि ग्रंथों में इसका, ये चरणानियों के ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन आता है। अभी जिसको समय तो नहीं हुआ है, परंतु अभी जो स्वाध्याय है, कहो या तत्व का रुचिक है, कहो या ऑर्डिनरी भी जिसको हम कहेंगे, इस प्रवृत्ति का है, शुभ प्रवृत्ति का। और जब उसको पता चलता है कि अभी मरण सामने है, तो शांति से नमोकार मंत्र कहेगा, कोई भगवान का नाम लेगा, कोई मृत्यु महोत्सव वाले पाठ पढ़ेगा, और वो करते करते देह छूट जाए। ये उसका जो मंद कषाय है। हो सकता है कि तत्व उसने पढ़े है तो तत्व संबंधी उसके विचार भी विचार चलेगे, विकल्प चलेगे। और जो सम्यक दृष्टि है, हो सकता है कि तभी वो आत्मा का आनंद लेते लेते देह छूट जाए, वो तो उसी को समाधि मरण कहेंगे। परंतु ऑर्डिनरीली इन सबको समाधि मरण या संलेखना कहने की पद्धति है। कषाय उनकी मंदता है बस। ये तीव्र संक्लेश करके मरता है कोई, हाय हाय मैं मर गया मैं मर गया, तो नेचुरली तीव्र संक्लेश परिणाम में अशुभ लेशाओं में मरण होता है, तो उसकी दुर्गति भी हो सकती
है।
वो भी है, क्योंकि जिसने आयु ऑलरेडी बांधी है, देव में जाने वाला है, और देव में जाने वाला है, तो ऐसा यानी थोड़ी शांति से मरेगा। और उसके लिए जैनी होना ऐसे थोड़ी है, क्योंकि अन्य मति भी जा रहे जाए ना, इतने असंख्या तो वहाँ देव है, अन्य तीरियंच भी जाते वहाँ, तो तीरियंच भी शांति से मर सकते हैं कि नहीं मर सकते। और अकेले मरण की बात नहीं, उसने जब आयु बांधी तब भी उसके वैसे परिणाम थे कि नहीं,
उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसी गति वैसी मति। और बांधा नहीं है अभी आयु, तो जैसी मति वैसी गति, इसमें कंफ्यूजन होता है, क्या बोल रहे हैं, जैसी गति वैसी मति के, जैसे मति वैसी गति क्या है। लेकिन जैसे आपने पहले आयु बांधी है, तो मरण के वक्त आपकी वैसे ही परिणाम होंगे। और अभी जब हमने जैसे परिणाम की आयु नहीं बांधी है, तो उसके अनुसार हमको गति नहीं मिलेगी।
ये कह रहे हैं, परसों बात आई थी, परसों ही बात आई थी, क्यों इसमें आई थी ना, आत्मभावना में आई थी, या अभी कलशामृत चल रहा है, आत्मभावना में शायद पड़ती। सम्यक दृष्टि जब आयु बांधता है, अब मनुष्य की बात करेंगे, देव की छोड़ो, मनुष्यों की, तो सम्यक दर्शन होने के बाद यदि आयु बांधता है तो देव की ही बांधता है, अन्य कुछ नहीं। मनुष्य तीरियंच के लिए नियम है, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि सम्यक दृष्टि जब आयु बांधता है तो शुभ परिणाम में ही बांधता है, अशुभ परिणाम में नहीं बांधता। आयु की बात है, देवगति तो शुभ अशुभ दोनों परिणाम में देवगति ही बांध रहा है। अभी सम्यक तो हुआ तो मनुष्यों को देवगति ही बंधेगी, अन्य तीन गति बंधेगी नहीं, मनुष्य गति भी नहीं बंधेगी। वो तो पहले दूसरे गुणस्थान में सबकी विच्छित्ति हो गई ना, गति की बात चल रही, अभी मात्र देवगति बांध रहा है। फिर भी जब देवायु बांध रहा है तब उसके शुभ परिणाम हो, क्योंकि अभी हमारे जो महाबंध में तो आप थे ना, तभी हम देखते, जब देवायु बन रही है तो उस समय उसके साथ ही बन रहे, देवायु के साथ देवगति बन रही है, परंतु वहां साता असाता का डिफरेंस नहीं, वहां साता बन रही है उसके, वहां स्थिर बन रहा है। ये महाबंध में ये बातें हमने विस्तार से देखी है, उस समय उसकी, उस अंतर्मूर्त में उसकी वो प्रशस्त प्रकृतियां बन रही, क्योंकि वो आयु के साथ देवगति का बन रहा है। ऑर्डिनरी देवगति के साथ ये सारे ऑप्शन है, स्थिर स्थिर शुभ शुभ यश यश सभी बन सकते हैं, परंतु जब देवायु के साथ बनते तो अयश नहीं बनेगा, तब यश स्थिति बने उस काल में। इसलिए उन्होंने, स्वामी जी ने जो बताया था कि जब देवायु का बंध कर रहा है, यानी समय दृष्टि जब आयु बांधता है, उन्होंने जनरल बात की, समय दृष्टि जब आयु बांध रहा है तब ये शुभ परिणामों में बनती है। अब यहाँ हम इसकी बात देखते हैं, भक्त प्रत्याख्यान की विशेषांश पढ़ेंगे। भक्त नाम भोजन का है और प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है, जिस संन्यास में क्रम क्रम से आहार आदि का त्याग करते हुए अपने और पराये उपकार की अपेक्षा रखकर समाधि मरण किया जाता है, उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। अभी उसके विस्तार में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चरणानियों का ग्रंथ नहीं है, और वो ग्रंथ सामने रखकर ही उसकी चर्चा करना ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसके भेद भी होते हैं ना, ये तो 12 साल का भी हो सकता है, कोई कोई जो होता है समाधि मरण की या संलेखना की बात। इन तीनों प्रकार के समाधि मरणों में से भक्त प्रत्याख्यान विधि, अब उसके भी तीन भेद है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट से भेद से तीन प्रकार की है। जघन्य भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण अंतर्मूर्त मात्र है, यानी अंतर्मूर्त पहले मरण के पहले उसने सब त्याग कर दिया। उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण 12 वर्ष है, अभी मैं जो बता रही कि 12 वर्ष की बात है, यानी वैसे तो मुनि राजाओं को विहार करने की वगैरह बातें हैं, परंतु यदि ये अंगीकार करे तो 12 वर्ष वो उस कर सकते हैं,
यानी एक ही जगह रहना ऐसा
कर सकते। 12 वर्ष की कौन दिल्ली वाले? अच्छा, यानी वो विहार की बात होती रहती है। मुझे क्या लगा कि वो रह सकते हैं, कर सकते हैं, अभी उसके चरणानियों की उसकी आज्ञा देखनी पड़ेगी, आज्ञा देखते हैं। और मध्यम भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण जघन्य अंतर्मुन से लेकर 12 वर्ष के भीतर है। ये मूलाचार के कुछ नीचे उद्धरण भी दिए हैं उन्होंने, भगवती आराधना है, मूलाचार है। अब 26 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, शंका। संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके मरे हुए साधु के शरीर का त्यक्त के तीन भेदों में से किस भेद में अंतर्भाव हो जाता है? क्या कहा? मेरा संयम नष्ट हो जाए इस भय से, कोई श्वास अपना ही दबाकर मर, यानी वो तो आत्मघात जैसा हो जाए ना, तो वो त्यक्त होता है कि नहीं होता, और उस तीन में से किसमें आएगा? तो कहते ऐसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद में अंतर्भाव नहीं होता, नहीं आता, क्योंकि इस प्रकार से मृत शरीर को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो आत्मघात कर दिया ना। शंका, जो मंगल शास्त्र का धारक है अर्थात ज्ञाता है, जिसने महाव्रत को धारण किया है, चाहे उस साधु ने समाधि से शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके शरीर को अमंगलपना कैसे प्राप्त हो सकता है? ये शंकाकार पूछ रहे। यदि कहा जावे कि साधुओं में अयोग्य कार्य करने वाले साधु का शरीर होने से अमंगल है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि
शंका चल रही है,
ये पूरी शंका है। जो शरीर पहले रत्नत्रय का आधार होने से मंगलपने को प्राप्त हो चुका है, यानी पूर्व में उस रत्नत्रय था इसलिए वो मंगल था, उससे पीछे से भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा मंगलत्व के स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं आता है, इसलिए मंगलपने की अपेक्षा संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास के निरोध से छोड़े हुए साधु के शरीर का त्यक्त के तीन भेदों में से किसी एक भेद में समावेश होना चाहिए। ये उनका फिर से प्रश्न वही है, इस शरीर का चावित में तो अंतर्भाव हो नहीं सकता, चावित का यानी हमने कदली घात की बात की थी, क्योंकि यदि इसका चावित में अंतर्भाव किया जावे तो आहार के निरोध से छूटे हुए त्यक्त शरीर का भी चावित में ही अंतर्भाव करना पड़ेगा। जो भक्त प्रत्याख्यान वगैरह है ना, वहां पर भी आहार का त्याग किया था, तो उसको भी आप कदली घात कहो, ये श्वास के निरोध करके मरने को क्यों कह रहे हैं? ये उनका प्रश्न है। तो ऐसे शरीर को किस भेद में ग्रहण करना चाहिए? फिर दोबारा वही बात करें, उसका कौन सा है, चावित है कि च्युत है कि क्या है, त्यक्त है, समाधि?
उनको क्या ऐसे भाई हो सकता है?
उनको
ऐसे भाई हो सकता है?
संयम अभी वो समय दृष्टि है क्या? नहीं, केवल बाह्य संयम धारण किया है, उसको संयम भी नहीं कहेंगे।
तो यहाँ पे तो फाउलिंग की सत की बात हो रही है।
ऐसा उसको भय हो जाए तो वो तो उस समय मिथ्या तो नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। ख्याल में आती है ना, उसी की तो बात चल रही है यहाँ पर।
ये शंकाकार को ऐसी शंका आ रही है, उसका उत्तर देने के पहले आपने उत्तर दे दिया।
समझ में आई ना, इस साधु के समय दृष्टि भी उसको मैं ज्यादा जीऊ या मैं जल्दी मरू, ऐसा अगर उसकी कल्पना होती है तो अरे शरीर तो अपने से जुदा ही है ना, ये तो संयोगी चीज है, उसका वियोग होना ही है, वो अभी हुए है कुछ काल बाद, उसमें क्या फर्क पड़ना है, मैं तो उससे जुदा ही हूँ। अभी आत्मभावना में वही बात चल रही, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से चल रही, शाम को चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ देखो क्या कहते हैं, इसका अभी उत्तर दे रहे, मरण की आशा से या जीवन की आशा से, जीव क्या करना चाहता है, बहुत बीमारी है मर जाऊं तो अच्छा है, छूट जाऊं तो अच्छा है, यह चाहता है मैं और जीऊं, मैं अभी मरण नहीं चाहता, मैं और जीऊं। सम्यक दृष्टि को ऐसी भावना नहीं होती, मैं अधिक जीऊं या मैं जल्दी मर जाऊं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो क्या जुदा ही है ना, कि इसका संयोग है वियोग वो तो होगा, अपने समय पर होगा, उसमें उसके लिए इच्छा करना ये तो मूर्खता है, हम इससे जुदे ही है तो ये और इसका संयोग रहा क्यों, तो इसके प्रति मोह है, मैं यह हूं तो इसके नाश से मेरा नाश हो जाएगा मानता है, तो मैं जीना चाहता हूं। क्यों जीना चाहते हैं, कुछ भोगना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जीना क्यों चाहता है ज्यादा, कोई कहेगा नहीं नहीं हमको यहाँ संयम कर सकते हैं मनुष्य में, इसलिए हम ज्यादा जीना चाहते हैं, तो ये तो उसकी बहाना बना रहा है। देखो यहाँ कहते समाधान, मरण की आशा से या जीवन की आशा से, अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कदली घास से छूटे हुए शरीर को चावित कहते हैं। ये तो हमने देखा था, जो कदली घास से छूटता है उसको चावित कहेंगे। जीवन की आशा से, मरण की आशा से, और जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कदली घास वो समाधि मरण से रहित होकर छूटे हुए शरीर को च्युत कहते हैं। यानी जो कदली घास से नहीं हुआ है, ना ही समाधि मरण किया है, तो उसको च्युत कहेंगे। आयु पूरी हुई, आयु पूरी हुई है तो मरण हो रहा है, तब भी जीव चाहता है ना कि नहीं हो गए मुझे ज्यादा जीना है, कोई कहते मुझे जल्दी मरना है, वो तो जो जिस समय मरण आना है उसी समय मरता है, परंतु उसने किस परिणाम से छोड़े है उस परिणाम के ऊपर यहाँ बता रहे हैं। आत्मस्वरूप की प्राप्ति के निमित्त जिसने बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया है, ये साधु की बात है कि दोनों ही परिग्रह का त्याग किया ना, अंतरंग बहिरंग, ऐसे साधु के जीवन और मरण की आशा के बिना ही, जो साधु है और ये अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग, अंतरंग परिग्रह लिया, ये केवल बाह्य का त्याग नहीं लिया है, अंतरंग परिग्रह में तो मिथ्यात्व और कषाय सब आ गए ना, इसलिए अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार का त्याग किया, वो भावलिंगी संत की बात है। जीवन और मरण की आशा के बिना ही, ना उनको जीवन की आशा है ना मरण की, तो उनके भी कदली घास से मरण हो सकता है कि नहीं कर सकता, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। मुनिराज है, भावलिंगी संत है, उनका कदली घास से मरण हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, तो उस समय भी उनके तो स्वरूप का चिंतन चलता है, और हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो गई देर, तो उनको भी वहां त्यक्त शरीर कहेंगे। या क्या कहते, आत्मस्वरूप की प्राप्ति के निमित्त जिसने बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे साधु के जीवन और मरण की आशा के बिना ही कदली घास से अथवा इतर कारणों से छूटे हुए शरीर को त्यक्त शरीर कहते हैं। यानी कदली घास तो हुआ है, पर ना वहाँ जीवन की आशा है ना मरण की आशा है, उसकी कुछ नहीं बात, कुछ बात बनी तो कदली घास से मरण हुआ। कदली घास क्यों कहते, क्योंकि अधिक आयु बांध के आए थे, परंतु किस कारणवश उनकी हो गया, जैसे हम कहते थे कोई उपसर्ग हुआ, देव मारते, कोई तीर्यंच ने कुछ किया, जाओ कुछ अन्य शत्रु कुछ है, या अन्य मतियों ने विरोध करने के लिए कुछ उपसर्ग करके मार दिया उनको, तो उनका कदली घात से मरण हो सकता है। उस समय भी उन्होंने वो तो अंतर्मूर्त मिनी में हो सकता है, तो उन्होंने त्याग कर दिया, मालूम है कि अभी इसमें से मृत्यु होने वाली है, तो त्यक्त शरीर कहेंगे उसे। विशेषार्थ, पर ये अगर स्वयं उस श्वास का निरोध करके अगर मरण आए तो वो तो हाँ वो त्यक्त नहीं कहलाएगा। पूर्व में बतलाए गए च्युत चावित और त्यक्त के स्वरूप पर ध्यान देने से यह भली प्रकार विदित हो जाता है। विदित होता है नहीं तो निश्चित होते हैं, प्रसिद्ध क्लियर होता है कि संयम विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके छूटे हुए साधु के शरीर का चावित में ही अंतर्भाव होता है, यानी वो कदलीघात में चावित किया उसने, क्योंकि स्वयं आत्मघात कर दिया, क्योंकि चावित मरण में कदलीघात की प्रधानता है, और श्वासोश्वास का स्वयं निरोध करके मरना, अभी कुछ कारणवश कोई बीमारी हो, कुछ हुआ, किसी ने गला दबाया, अन्य किसी ने और मरण हुआ, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, ये स्वयं ने प्राण घात किया है। तो श्वासोश्वास का स्वयं निरोध करके मरना कदलीघात मरण है, उसमें समाधि का सद्भाव नहीं रह सकता, क्योंकि वो स्वयं इच्छा से मरे, अभी पंखे को किसी ने लटक के मर गया, या कोई आत्मघात किया, कहीं जंप किया, रेलवे ट्रेन के सामने खड़ा होकर मर गया, ये स्वयं मरना चाहता है। कदलीघात कहीं अभी आई थी और उसने आत्मघात कर दिया, कदलीघात कहीं, इसलिए ऐसे मरण का त्यक्त के किसी भी भेद में ग्रहण नहीं किया जा सकता। ख्याल में आई ना बात, ये प्रश्न यही पूछा था। आप ये श्वास निरोध करके मरने को तो कदलीघात कहते हैं, और भक्त प्रत्याख्यान में तो आहार का भी निरोध कर दिया है, परंतु उसको आत्मघात नहीं कहते। यद्यपि किसी त्यक्त मरण में कदलीघात भी निमित्त पड़ता है, कदलीघात भी निमित्त पड़ता है ना, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट हुआ और उसने अभी त्याग कर दिया तो ये हो गया ना उसका, वो त्यक्त शरीर कहलाएगा। कदलीघात में मरण उसके अभी सामने है कि अभी यहाँ मरण की, तो उस समय वो समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग कर सकता है, ये कहना चाहते हैं। परंतु वहां पर कदलीघात से परकृत उपसर्गादि निमित्तों का ही ग्रहण किया गया, यानी वो स्वयं आत्मघात नहीं किया है, परकृत यानी कोई बाढ़ आई उसमें बह रहा है, और तब उसने अभी जाना कि अभी मैं नहीं बचूंगा, तो उसने समाधि मरण कर दिया, या अन्य भी कोई कारण है, किसी पशु ने मारा है, अन्य कोई बात बन जाती है, तो भले वो कदलीघात था परंतु वो त्यक्त कही उसने, वो तो समाधि मरण पूर्वक देह छोड़ा है। स्वकृत श्वासोच्छ्वास निरोध आदि आत्मघात के साधन विवक्षित नहीं है। आदि में अभी समझ लेना, श्वास का निरोध किया या ऊपर से पहाड़ पर से कूद दिया, कुछ अपनी जान दी उसने, ये बताना चाहते हैं।
स्वकृत
अभी तक हमने द्रव्य निक्षेप की बात देखी, मंगल शब्द पर द्रव्य निक्षेप लगा रहे थे, तो उसमें द्रव्य मंगल की बात है, उसमें आगम द्रव्य मंगल, नो आगम द्रव्य मंगल। आगम द्रव्य मंगल में मंगल शास्त्र का जानकार जीव उसमें उपयोग नहीं है, उस जीव को आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। अब नो आगम द्रव्य मंगल में क्या क्या लेना है, पहले में पहला भेद ज्ञायक शरीर, अभी पहले भेद के भेद देख रहे हैं। ज्ञायक शरीर में भूतकालीन वर्तमानकालीन शरीर और भविष्यकालीन शरीर को लिया। भूतकालीन शरीर के तीन भेद, च्युत चावित और त्यक्त, त्यक्त के तीन भेद कौन से,
मरण, समाधि,
प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और ये भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान के तीन भेद जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, वो काल की अपेक्षा से बताए, यहाँ तक हो गई ना, ये सारे भेद ज्ञायक शरीर के देखे, ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल के ये भेद देखे, यहाँ तक बात समझ में आई, अब आगे देखते हैं। अब जो हमने नौ आगम के तीन भेद देखे थे, कौन से गैर शरीर, भावी और फिर तद व्यतिरिक्त, उसमें जो भावी वाला भेद है उसकी बात करेंगे।
भावी को भव्य भी कहा है।
हाँ, भव्य भी कहा। निक्षेप की बात है।
तो जो सभ्य दृष्टि जीव रहता है या जिसने अभ्यास किया है उनके क्या अपने करंट भव की अपेक्षा भी उसका शरीर का ये पृथक्करण होगा, उसके बनने से सब निक्षेप होते हैं।
ये निक्षेप तो ये तो ज्ञान का
ज्ञान का भेद है, बराबर है।
ज्ञान कहने ये जानने के है ना,
तो वो जो
किसी भी विषय को जानने के लिए उसको इसको युक्ति कहते हैं। उसमें भी आया ना शास्त्र में समयसार में क्या लिखा है कि पहले में पहले ये सर्वज्ञ भगवान के उपदेश यानी जो आगम का उपदेश होना चाहिए, फिर परंपरा गुरुओं का उपदेश यानी उपदेश यानी वो तो पहले उसके देश ना लेंगे, उसके बाद युक्ति का अवलंबन ऐसा शब्द आया। तो युक्ति यानी कोई ट्रिक किया आइडिया बनाई वो नहीं युक्ति। युक्ति किसको कहना, तो युक्ति किसको कहना यहाँ पेज नंबर 18 पर देखो, 18 नंबर युक्ति से किसी विषय को जानने का अर्थ क्या होता है कि प्रमाण से नए से और निक्षेप से जानना। देखो पहली लाइन में 18 नंबर पेज, विद्वान लोग अभी प्रमाण क्या है नए क्या है निक्षेप क्या है उसकी बात करें। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, विद्वान लोग सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। हमने देखा था ये निक्षेप है वो गेय में पदार्थ में होते हैं, और ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। इस प्रकार युक्ति से किसको जानना है, युक्ति से जो हमने भगवान का उपदेश सुना है मोक्ष मार्ग संबंधी, मैं कौन हूँ पर कौन है या अच्छे द्रव्य है, हर एक को कैसा जानना है, तत्व का निर्णय कैसे करना है, तो कहते हैं युक्ति से करना है। युक्ति से पदार्थों का ज्ञान यानी अधिगम करना है, ये तत्वार सूत्र में भी आता है कि युक्ति से अर्थात प्रमाण नए और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का ग्रहण ग्रहण करना यानी उसका ज्ञान करना अथवा निर्णय करना चाहिए, यह है युक्ति। इसलिए समय सार में कुंसुंदाचार्य कहते हैं कि ये कैसे आगम के हमको अपने को जानना है, उसके लिए उपाय क्या है, आगम का उपदेश या आगम यानी सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, फिर परंपरा गुरुओं के द्वारा वो हमें प्राप्त है तो उनके गुरुओं का सेवन यानी उनके द्वारा उपदेश की प्राप्ति, युक्ति का अवलंबन यानी उस विषय को प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा नक्की करना, यह है युक्ति, उसको कहेंगे युक्ति का अवलंबन। और उसके बाद में क्या है, स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानना, और इससे आप प्रमाण करना नक्की करना ये कहते हैं। हमें आगम को जानना है, किसी विषय को जानना है तो आत्मानुभव से हम उसको निश्चित करेंगे, उसके बिना वो हमने वो जाना नहीं। हमने शास्त्र से सुना है कि चैतन्य है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, ये शरीर अचेतन भिन्न है मेरे से, उन उसने भिन्न कैसे जाना, स्वानुभव से उसको प्रमाण करना, ये है ये उपाधेय। जब उसने अपने को जाना और रागा और शरीर को अपने से जुदा जान लिया, अनुभव से जान लिया, तो उसका जानना, इसलिए उसको कहेंगे अनुभव से उसने सही नक्की कर दिया। चार बातें बताई, ये युक्ति है। प्रमाण नए और निक्षेप के द्वारा पदार्थों का निर्णय करना, यह है युक्ति, उसको युक्ति का अवलंबन कहते हैं। देखो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, आना है अपने भावी की बात हो रही थी अपनी, गायक शरीर के भेद देखे हमने, नो आगम का दूसरा भेद, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, ये 26 नंबर 27 नंबर पेज पर चल रही बात अभी। हाँ, विशेषात के नीचे अभी यहाँ नो आगम का दूसरा भेद की बात है, पहले ज्ञायक शरीर की बात है, इन्हें वो जानने वाले जीव का शरीर लिया, अब जीव को ले ले, परंतु वो कैसा जीव अभी नहीं जान रहा है, वो जाके भविष्य में जानेगा, ऐसे जीव को नुआगम कह दिया। वो अभी उसने जाना नहीं है, भविष्य काल में वो जानने वाला है। देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे, जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा। ये दो बातें हैं, मंगल पर्याय ने वो स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणत होगा, उसको मंगल पर्याय से परिणत होगा कहाँ, अभी नहीं है, भविष्य में होगा। उस जीव को उसे भव्य नवागम द्रव्य मंगल निक्षेप कहते, भव्य को या भावी को की बात है, भव्य ने होने वाला है ना, इस अपेक्षा से। विशेषार्थ, ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए हैं, उसका एक भेद भावी भी है। क्या कहा, भावी ज्ञायक शरीर लिया था, यानी उस जीव का भविष्यकालीन शरीर लिया था, और यहाँ जो भावी नाम का भेद है वो जीव को लगाया, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञायक शरीर के भावी विकल्प में, भावी विकल्प ने उसका जो भेद है भावी नाम का, भावी ज्ञायक शरीर जिसको कहा था, ज्ञाता के यानी जीव के, जानने वाले जीव के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया है, यानी अभी वो जानकार है शास्त्र का, और उसके नेक्स्ट भव का शरीर लिया वहां पर। यहाँ जीव की बात है, वो अभी नहीं जान रहा है पर भविष्य में जानने वाला है। वो भावी वाला जो भावी ज्ञायक शरीर था, और यहाँ भावी नोआगम द्रव्य है, और यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया है। जीव वही का वही है, वो ज्ञाता कब होगा, भविष्य काल में जाके होगा, यानी नेक्स्ट पर्याय में होगा या भविष्य काल में होगा, इसी भव में भविष्य काल में होगा, बस इतना ही लेना है। ये दोनों का डिफरेंस हुआ, यानी हमने अभी तक नोअगम के दो भेद देखे, ज्ञायक शरीर और उसके भेद प्रभेद। दूसरा भेद है भावी जीव को कहा, जो भविष्य में ज्ञाता होने वाला है। अब तीसरा भेद क्या नाम था उसका, तद व्यतिरिक्त, यानी इन दोनों के छोड़कर अन्य जो कुछ होगा, ना उसका शरीर है ना जीव है, तो जीव भी नहीं शरीर भी नहीं, तो अन्य क्या हो सकता है, तो कहते हुए तो कर्म नौकर्म हो सकते हैं, नौकर्म में भी शरीर को छोड़कर अन्य चीजें ले सकते हैं। देखो अभी यहां से पढ़ेंगे विशेषाद के नीचे, कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल, ये बीच में नो आगम द्रव्य मंगल लिखना चाहिए, क्योंकि ये नो आगम तद व्यतिरिक्त के भेद है, यानी उसको कैसे कहेंगे, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। देखो द्रव्य मंगल के हमने दो भेद किए थे, आगम नो आगम, यानी ये नो आगम द्रव्य मंगल के भेद चल रहे हैं। नो आगम द्रव्य मंगल में से ये कौन सा भेद है, तद व्यतिरिक्त वाला, यानी ये तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल की बात चल रही है। तद व्यतिरिक्त में भी दो भेद कर रहे हैं, कर्म और नो कर्म। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, ये बीच में नो आगम जरूरी है, हाँ। और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल के भेद से, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल यहाँ लिखा है ना आगे, इसलिए हमने वहां पर भी डाल दिया, दो प्रकार का है। उनमें दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म के कारणों से, इसको षोडश कारण भी कहते हैं, षोडश यानी 16 जीव के परिणाम है, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण बताए जाते हैं। तो दर्शन विशुद्ध आदि जो 16 है, ये क्या है, तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारण है। उन कारणों से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए तीर्थंकर नाम कर्म को, इसको अभी द्रव्य मंगल कह रहे, इसको उस कर्म को मंगल कह रहे। अब उसका पूरा नाम क्या है, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, यानी तीर्थंकर प्रकृति को यहाँ द्रव्य मंगल कह दिया। उन उसका पूरा नाम क्या है, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, पूरा, यानी कर्म को मंगल किस अपेक्षा से कहते, ये पूछ पूरी है, उसके पीछे का नाम पूरा ले लेंगे तो हमें ख्याल आ जाता है। ये क्यों कहा उसको द्रव्य मंगल, क्योंकि वह मंगल पने का सहकारी कारण है। वो जीव तीर्थंकर होने वाला है, वो जीव मंगल होने वाला है, मंगल पने को प्राप्त होने वाला है, और यहाँ वहाँ उसका निमित्त रूप से वहाँ है, इसे उसको भी कह दिया। ये सारे निक्षेप यानी वो वस्तु में द्रव्य में क्यों पड़ते हैं और किस अपेक्षा उसमें लगाई नहीं, ये बात चल रही है यहाँ पर। अब नौ कर्म में क्या लेना है, जो कर्म नहीं वो नौ कर्म, जो शरीर भी नहीं था वो जीव भी नहीं था, कर्म भी नहीं था उसके, उसको छोड़कर अन्य चीजें उनको ले रहे। नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य मंगल दो प्रकार का है। एक लौकिक नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य मंगल, और दूसरा लोकोत्तर। लौकिक यानी हमारे जो डेली वाले, और लोकोत्तर यानी अलौकिक ऐसा जाए। लोकोत्तर नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य मंगल। अब जिसको लौकिक में जिसको हम मंगल कहते हैं, जिन कुछ चीजों को पदार्थों को हम मंगल कहते हैं ना, उसकी बातें, उन दोनों में से अभी ये 13 नंबर ऊपर पढ़ेंगे पहले, क्योंकि उसमें भी सचित्त अचित्त मिश्र भेद करेंगे। ये लौकिक वाले यानी लौकिक नौ कर्म की बात कर रही, ऊपर जो बताए ना उसको पढ़ेंगे। सिद्धत्त पुण्य कुंभो वंदन मालाय मंगलम छत्तम सेदो वर्णो आदंसनो य कन्नाय जच्चसो। ये बीच में यह शब्द है या यह अक्षर है, यह चाहिए, हमने पहले उसको किया था। देखो यहाँ क्या कहते हैं, उन दोनों में से कौन से दो, लौकिक और अलौकिक, उन दोनों में से लौकिक मंगल, उसके भी तीन प्रकार बता रहे हैं, सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। सिद्धार्थ, इनमें सिद्धार्थ अर्थात श्वेत सरसों, शायद आपने वो कभी कलश की स्थापना देखी है, जो कहीं मूर्ति विराजमान करते हैं या अन्य भी जो कुछ होते हैं ना, वहाँ ये सफेद सरसों यूज करते हैं, उसमें वहाँ जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें ये लेते हैं। तो श्वेत सरसों जल से भरा हुआ कलश, ये कलश की स्थापना करते कहेंगे वहाँ, वो जल से भरा हुआ कलश। वंदन माला छत्र श्वेत वर्ण और दर्पण आदि अचित्त मंगल है। ये सचित्त अचित्त किन जो कुछ जो ये अचित्त है, इसमें कोई जीव नहीं रह रहा है, इसको अचित्त कहेंगे। हाँ, इसको मंगल माना गया, लौकिक में इसको मंगल माना गया। हम मंगल का चिन्ह भी करते हैं, स्वस्तिक तो निकालते हो क्या, उसको तो मंगल एक चिन्ह माना है, ये तोरण लगाते हैं, ये लौकिक में हम जो किसको शुभ है जिसको कहेंगे मंगल कहते हैं, उसकी बात है यहाँ। वो सचित्य धना सचित्य कहाँ है, वो तो ड्राय है, वो सचित्य कहाँ है, ड्राय है ना, वो सचित्य। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे, मिश्र किसको कहना, सचित्य अलंकार सहित कन्या। अच्छा अच्छा, ऊपर बताए, अचित्त मंगल हो गया ना ये, बाल कन्या तथा उत्तम जाति का घोड़ा आदि सचित्त मंगल है। बाल कन्या जैसे कुमारिकाओं को बुलाते कोई पूजा वगैरह में उनको, तो ये तो बाल कन्याओं को ये सचित्त मंगल कह दिया, उनको मंगल, या उत्तम जाति के घोड़े को भी मंगल कह दिया। ये लौकिक की बातें यहाँ बता रहे हैं। और मिश्र की बात, अलंकार सहित कन्या, अकेली कन्या को लिया सचित में, और वो अलंकार सहित वाली है वो मिश्र मंगल, आदि मिश्र मंगल समझना चाहिए। यहाँ पर अलंकार अचित्त है और कन्या सचित्त होने के कारण अलंकार सहित कन्या को मिश्र मंगल कहा है। देखो विशेषार्थ इसी का। पंचासी काय की टीका में भी जैसे नाचार्य ने इन पदार्थों को मंगल रूप मानने में भिन्न भिन्न कारण दिए हैं, वे इस प्रकार है। जिनेन्द्र देव ने व्रतादि के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया और उन्हें सिद्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई, इसलिए लोक में सिद्धार्थ अर्थात श्वेत सरसों मंगल रूप माने गए। यानी वो श्वेत सरसों को सिद्धार्थ नाम होगा इसलिए उनको भी मंगल मान लिया। जिनेन्द्र देव ने संपूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनेन्द्र देव संपूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए पूर्ण कलश मंगल रूप से प्रसिद्ध हुआ। बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय 24 ही तीर्थंकर वंदना योग्य है, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने वंदन माला की स्थापना की। अरहंत परमेष्ठी सभी जीवों का कल्याण करने वाले होने से जग के लिए छत्राकार है अथवा सिद्ध लोग भी छत्राकार है, इसलिए छत्र मंगल रूप माना गया है। इसलिए वो उल्टा छत्र लेते हैं। ध्यान शुक्ल लेशा इत्यादि को श्वेत वर्ण की उपमा दी जाती है। हम नहीं थे शुक्ल ध्यान कहते हैं, शुक्ल लेशा, ये शुक्ल श्वेत वर्ण है, इसलिए उसको पवित्र माना गया, मंगल माना गया, इसलिए श्वेत वर्ण मंगल रूप माना गया। जिनेन्द्र देव के केवल ज्ञान में जिस प्रकार लोक और अलोक प्रतिभाषित होता है, अच्छा इसलिए दर्पण को पवित्र मंगल कहा, उसी प्रकार दर्पण में भी अपना प्रतिबिंब झलकता है, अतएव दर्पण मंगल रूप माना गया है। जिस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ देव लोक में मंगल स्वरूप है, उसी प्रकार बाल कन्या भी राग भाव से रहित होने के कारण लोक में मंगल मानी गई है। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव ने कर्म शत्रुओं पर विजय पाई, उसी प्रकार उत्तम जाति के घोड़े से भी शत्रु जीते जाते हैं, अतएव उत्तम जाति का घोड़ा मंगल रूप माना गया है। ये पंचासी का एक टीका में ये बातें आ गई हैं। ये नीचे लिखा ना पंचासी का टीका, नीचे लिखे, ये जैसे नाचार्य की टीका है। हाँ, कहाँ लिखे क्या उसके नंबर नहीं लिखे हैं। आगे आते हैं 29 पेज पर आते हैं। हमने लौकिक मंगल में देखे, अब लोकोत्तर मंगल भी सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। अरहंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप जीव द्रव्य सचित्त लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। यहाँ केवल जीव द्रव्य लिया उसने। यहाँ पर केवल ज्ञान आदि मंगल पर्यायुक्त अरहंत आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु उनके सामान्य जीव द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को भाव कहा है, इसलिए उसका भाव निक्षेप में अंतर्भाव होता है। इसलिए केवल ज्ञान आदि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अरहंत के आत्मा की भाव निक्षेप में परिगणना होती है, उसमें वो गिने जाएंगे। अभी भाव निक्षेप हुआ नहीं, उसमें उसको गिनेंगे, क्योंकि वर्तमान में उस पर्याय से परिणत है, उसकी द्रव्य निक्षेप में गणना नहीं हो सकती। उसी प्रकार केवल ज्ञान आदि पर्यायों का भी इस लोकोत्तर नवागम द्रव्य मंगल में ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वे सब पर्याय भावस्वरूप होने के कारण उनका भी भाव निक्षेप में ही अंतर्भाव हो जाता है। ये तो ये लोक निक्षेप की है, ये सॉरी द्रव्य निक्षेप की बात चल रही है। द्रव्य निक्षेप के भेद देखते देखते, जो नो आगम है वो जानकार वाला द्रव्य नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है, उसका शरीर भी नहीं है, वो कर्म भी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति है, तो ये अन्य बातें। तो उसमें लौकिक तो बातें बता दी, लोकोत्तर यानी लोकोत्तर का होते अलौकिक, जो लौकिक नहीं वो लोकोत्तर। तो यहाँ तो जीव द्रव्य को कहा, परंतु उस पर्याय से परिणत वाला जीव द्रव्य नहीं लिया, ये बात कहते हैं। यानी वो अरिहंत पर्याय प्रकट नहीं हुई है, प्रकट होने के बाद उसको भाव निक्षेप में गिनेंगे। सामान्य से लिया, सामान्य से जीव द्रव्य जो है उसको यहाँ तद व्यतिरिक्त वाला गया, नो कर्म में ले लिया उसको, लोकोत्तर वाले। ये सचित्त में लिया, अब अचित्त में किसको लेना? कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयादि अचित्त लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। जो अभी हम अकृत्रिम चैत्यालय इतने देखे ना, अभी त्रिलोकसार में भगवान की मूर्तियां भी देखी, इसको चैत्यालयों को ले लिया है हम, क्योंकि मूर्तियों में तो उसमें तो निक्षेप होगा, स्थापना निक्षेप होगा। चैत्यालय को जिन मंदिरों को लेना, कृत्रिम चैत्यालय आदि जो है, कृत्रिम भी और अकृत्रिम भी, उसको लोकोत्तर मंगल कहेंगे। वो बीच में सब लगा लें, लोकोत्तर वो किसका भेद है? नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल का भेद है। उन चैत्यालयों में स्थित प्रतिमाओं का इस निक्षेप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव हो जाता है। हाँ, चैत्यालय को ले, मूर्तियों में तो भगवान की स्थापना है। आप कहेंगे अकृत्रिम चैत्यालय में किसी नाम की स्थापना, नाम की नहीं परंतु वो अरिहंत की या सिद्ध की भी तो हो सकती है, इसलिए वो स्थापना में आ जाएगी। हाँ, यहाँ पूछा है प्रश्न शंका, अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार कैसे संभव है? क्योंकि हमने तो स्थापना नहीं की ना, ये महावीर भगवान है, शांतिनाथ है, पार्श्वनाथ है, इसको तो आप स्थापना में अंतर्भाव करो। अकृत्रिम में तो किसी विशेष तीर्थंकर की तो नहीं है वो, उसका प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाओं में भी बुद्धि द्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर ये जिनेन्द्र देव है, इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि होती है। अकृत्रिम है, कोई सोच समझ कर बनाए भी नहीं, वो तो सहज रूप से ऐसी रचना है, वो रत्नमयी रचना सहज हुई है ऐसी। तो कहते हैं ये तो ये अरिहंत भगवान है, क्योंकि वो उनके बाजू में वो प्रातिहार्य वगैरह वो सब मंगल द्रव्य सब पाए जाते हैं, यक्ष उनको चामर ढोते वगैरह, अभी अभी अपनी बात हुई थी सब। यानी ये हमने वो बुद्धि द्वारा निश्चित किए अरिहंतों की प्रतिमा, कितने जगह वो चैत्य होते केवल, या तो वृक्षों के चैत्य वृक्षों के नीचे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं होती है, कहीं कहीं सिद्धों की होती, कहीं अरिहंतों की होती है, उनके प्रातिहार्यों से युक्त होते वो अरिहंत की कही जाती है, और ऐसे होते वो सिद्धों की कही जाती है, तो वो भी स्थापना निक्षेप हो जाता है। इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि। अथवा अग्नितुल्य बालक को भी जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है, क्या कहते हैं? अग्नितुल्य ने कोई तेजस्वी बालक है तो उसको अग्नि कह देते हैं, या हम कहते हैं वो सिंह समान पराक्रम है तो उसी को सिंह कह देते हैं, नर शार्दुल कह देते हैं। उसी प्रकार कृत्रिम प्रतिमाओं में की गई स्थापना के समान यह भी स्थापना है, इसलिए अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार हो सकता है। उक्त दोनों प्रकार के सचित्त और अचित्त मंगलों को मिश्र मंगल कहते हैं, वो सचित्त अचित्त दोनों मिलकर उसको मिश्र मंगल कहेंगे। अभी तो हमने नाम मंगल देखा, स्थापना मंगल देखा, द्रव्य मंगल देखा, अब क्षेत्र मंगल की बात करेंगे। यह थोड़ा नहीं समय हो गया, दो तीन लाइन पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी क्षेत्र मंगल की बात है, दो पैराग्राफ है, कल पढ़ेंगे इसको। जावा।